जयपुर मेंटल असाइलम। मिश्री और रजत इस समय बाहर वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे और अंदर डॉक्टर शारदा जी का चेकअप कर रही थी। पिछले दो दिन से शारदा जी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, इतनी ज़्यादा कि मिश्री उन्हें अकेले संभाल भी नहीं पा रही थी, इसलिए उसे रजत की मदद लेनी पड़ी। रजत शारदा जी को लेकर सिंघल के बड़े अस्पताल भी गया था। वहां पर डॉक्टर ने शारदा जी की हालत को देखकर उन्हें तुरंत मेंटल असाइलम में रेफर कर दिया। शारदा जी की बिगड़ती हालत को देखकर रजत रात में ही मिश्री और शारदा जी को लेकर जयपुर के लिए आ गया था। जयपुर जाकर डॉक्टर ने शारदा जी की जो रिपोर्ट रजत को बताई, रजत वो सुनकर हैरान हो गया और मिश्री का तो ये सुनकर ही बुरा हाल हो गया, वो वहीं पर रोने लग गई। रजत को इस समय मिश्री को संभालना था क्योंकि उसके पास कोई भी नहीं था। रजत ने मिश्री से कहा, मिश्री क्या तुम्हें आंटी को यहाँ छोड़ना है? देखो आंटी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, मुझे नहीं लगता कि उनका इलाज घर पर हो सकता है, इसके लिए हमें उन्हें यहाँ पर रखना ही पड़ेगा। अगर तुम चाहती हो तो हम आंटी को घर ले जा सकते हैं। मिश्री रोते हुए कहती है, मैं क्या करूँ भैया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर माँ को यहाँ नहीं रखेंगे तो वो इसी तरीके से बीमार पड़ी रहेगी, और अगर मैं उन्हें यहाँ रखती हूँ तो मैं कहाँ रहूँगी? मेरे पास तो कोई भी नहीं है भैया। अरुणिमा दीदी का भी कुछ पता नहीं है, वो तो हमसे बात भी नहीं कर रही हैं। रजत मिश्री को अपने गले लगाता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर फिलहाल उनकी फैमिली में कोई भी बड़ा नहीं है जो इस बारे में फैसला ले सके, इसलिए मिश्री की तरफ से मैं पेपर पर साइन करने के लिए तैयार हूँ, और प्लीज़ आप शारदा आंटी का अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट कीजिए और उन्हें जितनी जल्दी हो सके ठीक कीजिए। डॉक्टर जल्दी से रजत से सारे लीगल प्रोसेस फॉलो करवाते हैं और फिर शारदा जी को लेकर वो मेंटल असाइलम के एक कमरे में छोड़ देते हैं। इस वक्त शारदा जी को नींद का इंजेक्शन दिया गया था, इसलिए वो अपने कमरे में आराम से सो रही थीं। रजत और मिश्री एक बार वापस जाने से पहले शारदा जी से मिलने आए थे। रजत देखता है वो बहुत नॉर्मल और मामूली सा कमरा है, सिर्फ एक बेड है, एक टेबल है, कुर्सी भी नहीं है, पानी के जग को चेन से बांधा गया है और खिड़की पर मोटी सी जाली लगा रखी है। रजत हैरानी से डॉक्टर की तरफ देखता है तो डॉक्टर कहते हैं, देखिए आप गलत मत समझिएगा, ये सब पेशेंट की सेफ्टी को नज़र में रखकर डिज़ाइन किया गया है। पेशेंट कब काबू से बाहर हो जाए कोई नहीं कह सकता है, और फिर वो किस चीज़ को हथियार बना ले और खुद को ही नुकसान पहुंचा ले ये भी बता पाना मुश्किल है, इसीलिए हमें ये सब करना पड़ता है। पर आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ पर डॉक्टर है, नर्स है और इतना सारा स्टाफ है, इन्हें कुछ भी नहीं होगा, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। रजत को ये सब अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन शारदा जी की सेफ्टी के लिए ये सब ज़रूरी भी था, और उनकी जो हालत थी उस वजह से उनका इलाज होना भी बहुत ज़रूरी था। रजत ने हाँ में सर हिलाया और मिश्री को लेकर वापस सिंघल के लिए निकल जाता है। मिश्री रास्ते में बहुत ज़्यादा रो रही थी, रजत को उसे संभाल पाना बहुत मुश्किल था, मिश्री दो बार बेहोश भी हो गई थी। रजत इन सब चीज़ों से अकेले डील कर रहा था, इसीलिए उसने ज्योति को इन्फॉर्म कर दिया। ज्योति ने रजत से कहा कि वो जल्दी घर आएगी। रजत और मिश्री इस समय शारदा जी के घर में ही थे। मिश्री सोफे पर बैठी हुई थी और रजत ने उसके सामने मैगी की प्लेट रखी हुई थी। मिश्री ने कल से कुछ नहीं खाया था, रजत बस ये चाहता था कि मिश्री थोड़ा सा कुछ खा ले, वरना उसकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। तभी घर की डोरबेल बजती है, रजत जाकर दरवाज़ा खोलता है तो उसके सामने आस्तिक खड़ा होता है। आस्तिक को देखकर रजत की आंखों में गुस्सा उतर आता है और वो आस्तिक को देखते हुए कहता है, क्या बात है राजा साहब, आज आपके कदम इस तरफ कैसे आ गए हैं? आस्तिक के चेहरे पर इस समय एक एरोगेंट स्माइल थी। उसने अपने एक हाथ से रजत को साइड किया और अंदर आते हुए कहता है, अपने ससुराल में आने के लिए मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आस्तिक को वहां देखकर मिश्री भी हैरान हो जाती है और उसे गुस्सा भी बहुत आता है, क्योंकि उसके परिवार के साथ इतना सब कुछ हो गया है और आस्तिक ने अरुणिमा तक किसी भी बात की खबर नहीं पहुंचाई है, और ना ही अरुणिमा को उनसे कॉन्टैक्ट करने दे रहे हैं। मिश्री का गुस्सा आस्तिक को देखकर बढ़ता ही जा रहा है। आस्तिक स्टाइल से आता है और सोफे पर अपने एक पैर पर दूसरा पर चढ़ाकर बैठ जाता है। मिश्री और रजत दोनों खड़े थे और दोनों आस्तिक को अपनी नज़रों से घूर रहे थे, लेकिन आस्तिक को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सामने पड़ी हुई मैगी की प्लेट उठाता है और चम्मच में मैगी को लपेटते हुए उसे खाने लगता है। आस्तिक इधर उधर नजरें दौड़ाता है और अनजान बनते हुए कहता है, सासू माँ कहाँ है, नज़र नहीं आ रही हैं? शारदा जी का जिक्र होते ही मिश्री का गुस्सा उस पर हो गया। वो अपने हाथों की मुठ्ठियाँ कसती है और गुस्से में आस्तिक को देखते हुए कहती है, आप यहाँ पर क्या करने आए हैं जीजा जी? आस्तिक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और वो मिश्री को देखते हुए कहता है, काफ़ी बड़ी हो गई हो तो मिश्री, अपने जीजा से बात करने का तरीका भी भूल गई हो, या फिर सासू माँ ने तुम्हें इसी तरीके से बात करना सिखाया है। मिश्री कुछ कहने के लिए आगे आ ही रही थी कि रजत ने मिश्री का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और नामे सर हिलाया। रजत आस्तिक को देखते हुए कहता है, देखिए राजा साहब, इस समय हम लोग परेशान हैं और अगर आप इस घर के दामाद बनकर आए हैं तो माफ कीजिए, इस वक्त आपकी खातिरदारी नहीं हो सकती है, इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। आस्तिक अपनी जगह पर खड़ा होता है और अपने जेब से हैंकी निकालते हुए अपने हाथ को पोंछने लगता है। वो रजत को देखते हुए कहता है, दूसरों के घर के मामले में बोलने का बहुत ज्यादा शौक है तुम्हें, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी बात इसलिए सुन लेता हूँ क्योंकि एक वक्त पर तुमने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई थी, पर इसका मतलब ये नहीं है तुम मेरे मामले में कुछ भी बोलोगे और मैं बर्दाश्त करूंगा। और हाँ, मैं यहाँ पर तुम लोगों को इन्वाइट करने आया हूँ अरुणिमा के जन्मदिन पर। उसका बहुत मन है अपने परिवार से मिलने का, तो मैंने कहा क्यों ना अपनी बीवी की ये छोटी सी इच्छा पूरी करूँ। पार्टी महल में होगी तो कुछ ढंग के कपड़े पहन कर आना, और नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं अपने नौकरों के कपड़े भिजवा दूंगा।